نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. سورة المنافقون، یہ سورت سورة الجمعہ کا اس کو کہتے ہیں تتمہ ہے، اس کو کمپلیٹ کرتی ہے. سورة الجمعہ میں آپ نے دیکھا تھا نا، مسلمانوں سے خطاب کیا گیا، یہاں پہ بھی انہی سے خطاب ہو رہا ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، لیکن سورة الجمعہ میں اہل ایمان کی بات کہی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرو اور ذکر کرو اللہ کا، اور یہ سب چیزیں اس کے اندر ہم نے اس طرح سے پڑھی ہیں، تزکیہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا مقصد اور یہ سب چیزیں آئی تھیں نا اس میں. تو اس سورت میں، سورة المنافقون میں، منافقین کا ذکر ہے جو اپنے آپ کو خود کو مسلمان تو کہیں لیکن وہ دل سے مسلمان نہیں ہیں، ایمان ان کے اندر نہیں داخل ہوا ہوا. تو ایک دوسرے کے سمجھ لیں کہ اپوزٹ ہے نا، اہل ایمان جو پکے مومن اور منافق بالکل اس کا الٹ ہے. تو یہ دونوں صورتیں ساتھ ساتھ اس طرح سے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جمعے کی نماز میں سورة الجمعہ اور سورة المنافقون پڑھا کرتے تھے، اور فجر میں بھی پڑھا کرتے تھے، سورة الجمعہ ایک رکعت میں اور ایک میں سورة المنافقون. آپ نے منافقین کے بارے میں بہت ساری صورتوں میں پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں، سورہ نساء میں، سورہ انفال میں، سورة الفتح میں، یعنی کافی صورتوں میں ہم ان کا ذکر اچھے طریقے سے دیکھ چکے ہیں، ڈیٹیل میں ہم پڑھ چکے ہیں. پھر ایک یہ صورت ایسی ہے کہ جس میں پوری کی پوری کمپلیٹ صورت منافقین کے بارے میں ہی اتری ہے. پہلے تو ہم منافقت کو دیکھ لیتے نا، منافق ہوتا کون ہے، کیا چیز ہے نفاق. منافق، میں نے جیسے آپ کو اس کا روٹ بھی بتایا تھا، نون فا قاف سے نافق. نافق کہتے ہیں سرنگ کو، ٹنل. اچھا، ٹنل میں کیا ہوتا ہے؟ آپ نے ٹنل اگر کبھی دیکھی ہو، یا یہ ٹنلز آپ دیکھتے ہیں جو بنی ہوئی ہیں زیر زمین، تو اس میں آپ نے دیکھا نا کہ ایک طرف سے جانے کا راستہ ہوتا ہے اور ایک طرف سے نکلنے کا ہوتا ہے. بالکل یہی حالت منافق کی ہوتی ہے. منافق بھی دین میں آتا ہے، ایک طرف سے انٹر ہوتا ہے، دوسری طرف سے نکل جاتا ہے. وہ اپنا ایک اور راستہ تیار رکھتا ہے کہ جب کبھی خطرہ ہو، نکلنے کی ضرورت پڑے، تو دوسرے راستے سے نکل جاؤں. مومن تو ایک دفعہ داخل ہوا، اس نے اپنی کشتیاں جلا دیں کہ بس اب یہی میرا جینا مرنا ہے نا، اسلام ہی ہے، دین ہی ہے، اس کے علاوہ کہیں نہیں، کوئی ایگزٹ نہیں ہے. منافق ہمیشہ ایک بیک ڈور اوپن رکھتا ہے. وہ اسی لیے ہر ایک کے ساتھ بنا کے بھی رکھنا چاہتا ہے کہ دوسری طرف کے لوگ بھی نہ ناراض ہوں، ہو سکتا ہے کل کو ان کی طرف جانا پڑے. تو ایک ایگزٹ اپنے لیے ایک اور رکھتا ہے. تو یہ نفق سے ہی لفظ ہے، یہ اس کا مصدر منافقہ یا نفاق باب مفعلہ سے یہ ہے. تو منافقین کا کردار پھر اسی حوالے سے، جیسے یہ لفظ بتا رہا ہے، دو منہ انسان کا نظر آتا ہے، جس کے دو منہ ہوں سمجھ لیں، ایک طرف کچھ اور ایک طرف کچھ. ادھر گئے تو ان کے ساتھ ہو گئے، ادھر آئے تو ان کے ساتھ ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نفاق کو مرض کہا ہے، یہ ایک بیماری ہے، ڈیزیز ہے. اور ڈیزیز میں کیا ہوتا ہے، انسان کو کوئی بھی بیماری لگتی ہے نا، تو ایک دم ایکسٹریم پہ نہیں وہ پہنچ جاتا، اس کے سٹیجز ہوتے ہیں، فرسٹ سٹیج، سیکنڈ سٹیج، تھرڈ سٹیج، اور پھر اس طرح سے جب وہ، جیسے ہمیں بتاتے ہیں نا بیماریوں کے، کہتے ہیں یہ टीबी की ये स्टेज है, ये कैंसर की ये स्टेज है, जैसे जैसे स्टेजेस बढ़ती जाती हैं उस बंदे के वापसी का चांस कम होता जाता है। शुरू की स्टेजेस में फिर भी बीमारी पकड़ी जाए तो जल्दी उसका इलाज हो सकता है। निफाक भी ऐसी बीमारी है कि जैसे जैसे बढ़ती जाती है इसका इलाज मुश्किल होता जाता है। इसका फर्स्ट स्टेज क्या होता है कि इंसान से जब कोई गलती होती है तो वो बजाय इसके कि अपनी गलती को माने, झूठ बोल बोल के और झूठे बहाने कर कर के वो बच निकलना चाहता है कि मेरी इज्जत सलामत रहे। आपने गज़वा तबूक के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं और उसमें हमने देखा था बड़े अच्छे तरीके से कि जो मोमिन थे, तीन मोमिन मुसलमान थे जो पीछे रह गए थे, उन्होंने तो आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच सच बता दिया कि हम इस वजह से पीछे रहे थे। लेकिन जो मुनाफिकीन थे वो आके बहाने करने लगे कि असल में ये था, हमारे घर खाली थे, हमारे घर पीछे ऐसे थे, हमें ये मसला हो गया, हमें झूठे उजर बना बना के जो है ना उन्होंने अपने आप को बचाने की कोशिश की। उस वक्त इंसान कहता है कि चलो कोई बात नहीं, कोई बहाना कर लेते हैं, कुछ ऐसे कर लेते हैं, क्या ज़रूरत है कि इस वक्त इंसान आगे वो आए। तो पहला स्टेज झूठ का कि इंसान अपनी गलती ना माने, और दूसरा स्टेज यही कि इंसान झूठे बहाने तराशे, और उसके बाद तीसरा स्टेज, और उसमें फिर झूठी कस्में भी आ गई। झूठी कस्में भी इंसान खाता है इसी वजह से कि मैं किसी तरह बच जाऊं, क्योंकि आखिर झूठ बोल बोल के एक दिन तो उसका पोल खुलने का चांस होता है, और ये सूरत शुरू ही हो रही है इनकी झूठी कस्मों से। इंसान फिर झूठी कस्में खाने लगता है, क्योंकि इसका एतबार खत्म हो जाए ना, कब तक इंसान झूठ बोलता रहेगा। एक दिन तो आता है कि इंसान जो है ना अपना एतबार खो देता है, सबके सामने उसका झूठ खुल जाता है। तो जब उसको लगता है कि मेरा एतबार उठ रहा है तो अब झूठी कस्में खाने लगता है। तो पहला स्टेज बहानेबाजियां, झूठ बोलने, दूसरा स्टेज यही झूठी कस्में वगैरह खाना, तीसरा स्टेज फिर अब ये आ जाता है कि इंसान को जो मुनाफिक होता है, अब उसको जो सच्चे मोमिन होते हैं वो बहुत बुरे लगने शुरू हो जाते हैं। वजह क्या है? वजह ये जिसको सूरह बकरा में कहा ना कि उनको ये लगता है कि ये सुफहा हैं, बेवकूफ लोग हैं। वजह ये है कि जब कहा जाता है दीन की खातिर कोई कॉल आती है, कोई कॉल दी जाती है कि निकलो मसलन अल्लाह के रास्ते में निकलो, तो अब ये कहेंगे कि नहीं जी मसलहत तो ये है और क्या करें, ये भी काम है वो भी काम है, क्या ज़रूरत है इस तरह से महाजराई करने की, बस ठंडे ठंडे होके तबलीग की जाए, ऐसे इन किसी के साथ कन्फर्टेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, ख़तरा मोल लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अब ये मसलहतें देख रहे हैं, लेकिन जो सच्चे मोमिन होते थे वो हर कॉल पे लब्बैक कहते थे, वो हर हुक्म पे समेना वाताना कहते थे, वो हर बात पे तैयार होते थे, पहले सर कटाने को भी तैयार है, माल देने को भी तैयार है, हर हुक्म के बजा लाने को भी तैयार है, कोई चूं चरा नहीं है। तो इनको लगता था कि इनकी वजह से हम भी मुसीबत में फंस जाते हैं। आप मसलन सोचे ना, एक क्लास में अगर कुछ लोग हैं वो हर रोज़ आने को तैयार हैं, और कुछ लोग हैं वो कहते हैं सिर्फ एक हफ्ते में एक दफ़ा पढ़ाई करी जाए, बाकी जो बड़े सिंसियर लोग हैं वो कहते हैं नहीं 4 दिन भी हम पढ़ाई करने को तैयार हैं। तो अब वो जो लोग एक दिन करने को तैयार होते हैं वो उनके खिलाफ हो जाते हैं, कहते हैं इनकी वजह से हमें भी मुसीबत पड़ती है, ये बहुत ज़्यादा कुछ आगे बढ़ बढ़ के बोलती हैं और इनकी वजह से सारी क्लास मुश्किल में पड़ती है ना, ऐसे होता है ना। तो ये यहाँ पे यही हाल हो रहा है कि जो सच्चे मोमिन है वो इनको बुरे लगते हैं, वो कहते हैं ये तो फनेटिक हो गए हैं, ये ना अपना कोई नफ़ा नुकसान देखते हैं, ना कोई कुछ देखते हैं, खतरात में कूद जाते हैं, इनकी वजह से हम भी फंसते हैं, क्योंकि इनकी वजह से ये भी लाइमलाइट में आ जाते थे, सबको पता चल जाता था कि ये हैं जो मुनाफिक हैं। हालांकि अपने आप को वैसे बड़े समझदार समझते थे कि हम देखो ना कितनी समझदारी से चल रहे हैं, और इनको देखो जरा, ना जान की परवाह, ना अपने बच्चों की परवाह, ना अपनी फैमिलीज की परवाह, उस दीन की खातिर हर चीज़ पे कूदने को तैयार हो जाते। तो ये लास्ट स्टेज है कि फिर इनको इतने बुरे लगने लगते हैं कि सच्चे मोमिन कि वो उनको बर्दाश्त नहीं होते। ये हैं इसकी 3 स्टेजेस। अच्छा, अब एक और बात जो बहुत अहम है वो ये कि हम ये सोचते हैं ना कि मुनाफिक जो होता है वो जानबूझ के मुनाफिक जो होता है वो शायद जानबूझ के इस्लाम लेकर आता है फायदों के लिए, और वो दिल में मुसलमान नहीं होता। ये बात भी किसी हद तक सही है, मगर ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो शऊरी तौर पे वाकई ये सोच के आते हैं कि अच्छा हम इस्लाम लाएंगे, फिर उसके बाद ये होगा, फिर हम दिल में हम नहीं इस्लाम लाएंगे और ऊपर ऊपर से हम ये शो करते रहेंगे और इस तरह की प्लानिंग करके बाकायदा और वो इस्लाम में दाखिल हों। ऐसे लोग थे लेकिन बहुत कम थे, समझी बात। ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना कि ये सब बातें इसलिए बतानी जरूरी है कि हमने सूरत को समझना है, हमें पता होना चाहिए ना मुनाफिक कौन थे, क्या उनकी बैकग्राउंड है, उनको हम कह सकते हैं जो कॉन्शियसली मुनाफिक बने, शऊरी मुनाफिकीन, कि वो किसी गर्ज के लिए, फायदे के लिए इस्लाम में आए। जैसे यहूद के बारे में कहा गया, वो सुबह को इस्लाम लाते थे, शाम को वो इस्लाम से निकल जाते थे, बाकायदा प्लानिंग के साथ आया करते थे, कलमा पढ़ते थे, बैठते थे साथ, लेकिन उनकी प्लानिंग क्या होती थी कि शाम को हम इस्लाम से निकल जाएंगे और लोगों को कहेंगे हमने देख लिया इस दीन को कुछ नहीं है इसके अंदर, ऐसे ही बस बातें ही हैं, कुछ खास चीज़ नहीं है, इस तरह लोग बदजन हो जाएंगे। तो इस तरह से तो बहुत ज़्यादा लोग ऐसे नहीं थे, लेकिन ज्यादा लोग वो थे जो अनकॉन्शियस मुनाफिकीन थे, गैर शौरी, यानी उनको पता नहीं है कि वो मुनाफिक हो गए हैं। वो बड़े सच्चे तरीके से इस्लाम में दाखिल होते थे, बड़े सच्चे तरीके से, यानी इस्लाम उनको उन्होंने अच्छे तरीके से एम्ब्रेस किया, लेकिन आपको पता है ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कम हिम्मत होते हैं या बुजदिल होते हैं। अब उनको बड़ी अच्छी लगी है इस्लाम की बात, बड़ी अच्छी लगी, सब बड़ा अच्छा है। अब वो कलमा तो उन्होंने पढ़ लिया, हो सकता है उनको उस वक्त पता ही ना हो कि असल में इस कलमे का माना क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह की फिर रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, ये पढ़ना कोई छोटी बात नहीं है, हो सकता है ये बात हो। और ये भी हो सकता है कि उनको पता तो हो कि इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, लेकिन जब बाद में प्रैक्टिकली उनके सामने मुतालबे आए इस्लाम के तो वो घबरा गए हों, क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहते, बच बच के चलना चाहते हैं। उन्होंने उस वक्त तो कबूल कर लिया था, उनको थोड़ी पता था कि अच्छा ये अच्छा इतनी इसमें आगे आगे जाके कुर्बानियां भी देनी पड़ेंगी, और फिर ये तो आए दिन कोई जंगों का मामला आ जाता है, कभी यहां से आजमाइश, कभी किताल के लिए कह रहे हैं निकलो, कभी कह रहे हैं अपना जान लगाओ, कभी कह रहे हैं माल लगाओ, हमें हर वक्त खतरों में कूदना पड़ता है, घर वालों को भी छोड़ के जाना पड़ता है, अपने काम कारोबार छोड़ने पड़ते हैं, इतना तो हमने सोचा ही नहीं था। या फिर कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने जिनको ये समझ आ गई थी, लेकिन जब प्रैक्टिकली कोई चीज़ सामने आए ना तो समझने में और उस वक़्त उस चीज़ का सामना करने में बहुत फ़र्क होता है। जैसे आज हमें कह दें कि भाई इस्लाम की खातिर कौन कौन है जो ये कुर्बानी दे सकता है, तो हम सारे कहेंगे हाँ जी, हम तो बड़े जोश में कहेंगे हम तो अपना जान माल लगाने को तैयार हैं, हम ये करने को तैयार हैं, लेकिन जब असल चीज़ सामने आती है ना आजमाइश, तो फिर बहुत कम लोग खड़े रह पाते हैं। तो ये लोग भी ये सब चीज़ें करने को तैयार नहीं थे, कहते थे ये तो बड़ा मुश्किल काम है, इसका तो नहीं हमने सोचा था कि भाई ऐसा भी करना पड़ेगा, बट ठीक है, एक इस्लाम ले आए, ठंडे ठंडे एक चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया और उसको लेकर चले, बस इतना ही काफ़ी है, आगे ये इस तरह की सिचुएशंस में पड़ना, इसके लिए ये करना पड़ेगा, ये तो हम नहीं जानते थे। तो ये वजह थी, और उसके बाद भी वो अपने आप को यही समझते थे कि हम सच्चे मुसलमान हैं, लेकिन हम जरा समझदारी से चलने वाले हैं, और ये जरा सुफहा हैं, बेवकूफ़ से लोग हैं, बस ऐसे ही वो खतरों में अपने आप को इन्होंने डाला हुआ है, लेकिन ये नहीं वो सोचते थे कि हम मुनाफिक हैं। हाँ, अगली स्टेजेस पे जाके जब ये मर्ज बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है तो हो सकता है कि किसी को पता चल गया हो कि मेरे अंदर निफाक की बीमारी है, क्योंकि इतनी खोल खोल के आयात बयान की गई, लेकिन अदरवाइज आम जो थे ना, क्योंकि इस बीमारी के भी स्टेजेस, जैसे मैंने आपको बताया ना कि स्टेजेस हैं, जैसे ईमान के स्टेजेस हैं इसी तरह निफाक के भी स्टेजेस हैं। ईमान में भी तो आप देखें ना दर्जे हैं, किसी ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस चीज को समझाया कि इंसान, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह कह के तो सब मुसलमान हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद अंदर से हम क्या हैं, हमारी हम किस लेवल पे हैं ईमान के, इसमें हम सब डिफरेंट हैं। एक किस्म के लोग वो होते हैं जो पक्के मुसलमान होते हैं, पक्के मोमिन होते हैं, लेकिन मोमिन के भी तो ईमान के भी तो लेवल्स हैं ना। बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया कि जैसे जिनको मैथमेटिक्स का पता है, ज़रा एलजब्रा वगैरह पढ़ाओ, इतना हद तक तो मेरे ख्याल सबको ही पता होगा कि आपको पता है कि पॉजिटिव नंबर्स होते हैं 0 के बाद, राइट? तो 1 से लेके आगे 1000, 100,000, मिलियन, जितने भी हैं वो सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो ईमान भी इस तरह है, 1 से शुरू होता है और आगे 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 बढ़ता जाता है इन्फिनिटी तक। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक का सोचे ईमान कितना बड़ा लेवल था, लेकिन उस माशरे में भी हर एक का ईमान अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसा नहीं था, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसा नहीं था। आम मुसलमान भी थे वहाँ पे, किसी का ईमान 1 लेवल का, किसी का 10 लेवल का, किसी का 100 का, किसी का, तो इस तरह से चलते थे ना। इसी तरह आपको पता होता है कि नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, माइनस में भी होते हैं। ये जो माइनस के नंबर्स है ना, ये मुनाफ़क़त है। कोई इंसान मुंह से कह सकता है ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन उसके अंदर क्या है? मुनाफ़क़त। -1, -2, -3, और इसी तरह पीछे की तरफ नंबर जाते हैं। फिर माइनस से स्टार्ट होते हैं, -1 से। किसी का निफाक इतना सा है, सिर्फ -1, किसी का -2 है, किसी का -3 है, फिर किसी का -1000 है, किसी का मिलियन माइनस में है। तो निफाक भी आगे बढ़ता रहता है। इसी तरह एक बीच में नंबर 0 होता है, 0। और वो 0 क्या है? जो हमने सूरह हुजरात में पढ़ा था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने मुंह से तो कहते हैं कि हम ईमान ले आए, तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? तुम इस्लाम लाए हो, ईमान तो नहीं लेकर आए, ईमान तो अभी तुम्हारे दिलों में दाखिल ही नहीं हुआ। ऐसे भी लोग होते हैं। ये जैसे हम सब कहें हम तो ईमान ले आए, ईमान एक डिफरेंट चीज़ है और इस्लाम लाना एक डिफरेंट चीज़ है। आपने कलमा पढ़ लिया, आप मुसलमान हो गए, लेकिन आप मोमिन हुए हैं या नहीं ये नहीं पता। ये आपके अंदर की जो कैफियत है, बातिन आपका है, वो बताएगा ईमान कितना। तो वो अभी 0 पे खड़े में, कानूनी तौर पे मुल्क में उनके आईडी कार्ड में वो मुस्लिम ही कहलाएंगे, मगर जरूरी नहीं कि हर मुस्लिम मोमिन भी हो। तो निफाक की ये स्टेजेस हैं, जैसे ईमान की स्टेजेस हैं, जैसे ईमान बढ़ता है घटता है, निफाक भी इस स्टेजेस में बढ़ने, किसी का ज्यादा भी हो सकता है, किसी का कम भी हो सकता है। अब जिस बात की तरफ मैं आपको तवज्जो दिलाना चाहती हूँ वो ये है कि यहाँ सूरतुल मुनाफिकून में उन मुनाफिकीन का जिक्र है जो जो मैंने आपको बताया सेकंड कैटेगरी के हैं, अनकॉन्शियस जो मुनाफिक, कि वो समझते यही हैं कि हम ठीक हैं, हम तो बस सही इस्लाम में दाखिल हुए हैं सब, लेकिन उनके अंदर मुनाफिकत है। और यही बात हमें भी समझनी है कि हम सब भी ये सोचते हैं, जब सूरतुल मुनाफिकुन पढ़े, हो सकता है आपको इतना इंटरेस्ट नहीं हो कि मुनाफिकीन से हमारा क्या ताल्लुक हो, तो उस दौर के वो लोग थे जो ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। लेकिन अगर हम सहाबा की जिंदगी देखें तो हजरत उमर के बारे में कौन नहीं जानता उनका क्या मकाम और मर्तबा है। पहले भी आपसे ये मैंने बातें बयान की हुई हैं, लेकिन देखें कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो हज़रत हुज़ैफ़ा, हज़रत हुज़ैफ़ा वो सहाबी रसूल हैं जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकीन के नाम बता दिए थे। आखिरी उम्र में जाके अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुनाफिकीन के नाम वही के ज़रिए बता दिए थे कि ये लोग मुनाफिकीन हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को नहीं इनका बताया था, सिर्फ हज़रत हुज़ैफ़ा जो राजदाने रसूल कहलाए फिर ना, कि उनको सिर्फ ये पता था कि कौन कौन मुनाफिक है। हजरत उमर जाके उनसे पूछा करते थे कि क्या मेरा नाम उस लिस्ट में तो नहीं है जो मुनाफिकीन की लिस्ट है, इतना डरते थे कि मेरे अंदर तो मुनाफिकत नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी मुनाफिकीन को चुन चुन के कोई इस तरह से निकाला नहीं, कोई उनको ऐसे हाईलाइट नहीं किया लोगों में, कम्युनिटी के अंदर पब्लिसाइज नहीं किया कि ये मुनाफिक, ये मुनाफिक, ये मुनाफिक, ऐसे नहीं किया कभी। हाँ, जब अल्लाह ताला ने मना फरमा दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकीन की नमाज जनाजा फिर कभी नहीं पढ़ाई। और हज़रत उमर देखा करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसकी नमाज जनाजा पढ़ाते हैं और किसकी नहीं पढ़ाते। जिसकी नहीं पढ़ाते थे हज़रत उमर भी नहीं उनमें उस नमाज जनाजा में शरीक होते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बाद हज़रत हुज़ैफ़ा को वो देखते थे कि ये जाते हैं किसी की नमाज जनाजा में या नहीं, क्योंकि वो भी मुनाफिकीन की नमाज जनाजा में शरीक नहीं होते थे। तो उनकी उनको फॉलो करते थे हज़रत उमर कि अगर वो गए हैं तो फिर मैं जाऊंगा। इतने कॉन्शियस थे हज़रत उमर। इसी तरह एक और वाक़या हम सुनते हैं, बहुत मशहूर है, हज़रत हंजला का, कि हज़रत हंजला अंसारी सहाबी हैं और एक दिन कहने लगे हंजला मुनाफिक हो गया, हंजला मुनाफिक हो गया। ये कहते हुए जा रहे थे, रास्ते में हज़रत अबू बकर सिद्दीक मिले। क्या हुआ? कहते हैं जैसा मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में होता हूँ वैसी मेरी दिल की कैफियत नहीं होती जब मैं घर जाता हूँ, बाल बच्चों में बैठता हूँ और इस तरह डिफरेंट कैफियत हो जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बहुत ही ईमान जाहिर है, फिर कितने लेवल पे होगा, और घर जाके तो वो वाली हालत नहीं रहती, तो मैं तो मुनाफिक हो गया। अच्छा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक भी फरमाने लगे कि ये तो मेरा भी हाल होता है, तो चलो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाके पूछते हैं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अपनी कैफियत बताई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यही तो ईमान है, अगर तुम्हारी हमेशा ही वो कैफियत रहे जो मेरी मजलिस में होती है, तो फरिश्ते तुम्हें सलाम करने लगे रास्तों में, तुम फरिश्तों को देखने लगो, वो तुम्हें सलाम करने लगे। उतनी हाई ईमान का लेवल ऑल द टाइम अगर रहे, नहीं रह सकता इंसान का। तो आप देखें हज़रत हंजला ये सस्पेक्ट कर रहे हैं कि मैं कहीं मुनाफिक तो नहीं हो गया। इतने बड़े बड़े सहाबा कराम हैं, अगर उनको ये खौफ रहता है तो फिर हमें कितना खौफ रहना चाहिए। क्योंकि मुनाफ़क़त वो चीज़ है कि ये बीमारी जिसमें आ गई तो आप जानते हैं ना उसका अंजाम क्या है, कि जहन्नुम का भी सबसे निचला दर्जा, इवन मुशरिकीन का भी दर्जा ऊपर का होगा, दर ऊपर का होगा, जो सबसे निचला दर्जा है ना जहन्नुम का, वो मुनाफिकीन के लिए सबसे निचला। ये काफिर जिनको हम कहते हैं मजूसी कहते हैं, यहूद ईसाई या मुसलमान जो दुनिया से तौबा के बगैर चले गए, या और सब के दर्जे ऊपर हैं, लेकिन मुनाफिक सबसे नीचे है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक हदीस में आता है कि निफाक का खतरा और उसका अंदेशा सिर्फ मोमिन को रहता है। इस हदीस से आप समझे, सिर्फ मोमिन को निफाक का खतरा रहता है कि कहीं मैं मुनाफिक तो नहीं हो गया, और निफाक से अपने आप को महफूज कौन समझता है? सिर्फ मुनाफिक। यह हदीस है। मोमिन ऑल द टाइम उसको ये डर रहता है, हाय कहीं मेरे अंदर मुनाफिकत तो नहीं आ गई, लेकिन अपने आप को महफूज कौन समझता है जो खुद मुनाफिक होता है। आप ये हाल देख लें, क्योंकि देखिए ना, इंसान जिसके पास कोई खजाना होता है उसी को चोरी का डर रहता है ना। अब जिसके पास ईमान का खजाना है उसी को हर वक्त डर रहेगा, हाय मैं लूट ना जाऊं, हाय ये मेरा खजाना कहीं चोरी ना हो जाए। निफाक तो ऐसे ही है ना, बीमारी है, वो तो चाट जाएगी ईमान को, जैसे दीमक लग जाती है ना, अंदर ही अंदर किसी के दीमक लगी हो तो क्या हो जाएगा, वो अंदर से खोखला है, बाहर से वो ऐसे है कि बिल्कुल सही नजर आ रहा है। यही करते हैं ना दीमक। तो जिसके पास खजाना है उसको ही डर है कि कहीं चोर ना पड़ जाए, हाय ये मेरा कहीं खजाना लूट ना जाए। वो जो मुनाफिक है उसके पास तो कोई ईमान ही नहीं है, उसको किस बात का डर, उसको क्या चोरी का डर, उसके पास कुछ हो तो वो डर रहे ना। तो इसलिए हर वक्त ईमान वाला डरता रहता है, हाय निफाक की बीमारी ना लग जाए, कहीं मैं मुनाफिक तो नहीं हूं, मुनाफिकत की कौन कौन सी खसूसियात मेरे अंदर मौजूद है, उनको मैं निकालूं। इसी तरह एक हदीस में यह भी आता है कि एक मुनाफिक से जब कोई गुनाह हो जाता है तो उसको बस ऐसे ही लगता है जैसे नाक में मक्खी बैठी, और मतलब इतना लाइट सा उसको लगता है। हाँ लगता तो है, पता तो चलता है कि हाँ कुछ कुछ हो गया, कोई मसला हो गया है, कोई मुझसे खता हो गई, मगर एहसास कितना है सिर्फ, जितना इतना सा वेट जितना एक मक्खी का वेट होता है, मक्खी नाक पे बैठ जाए। और मोमिन के से जब कोई गुनाह हो जाता है ना, गुनाह तो मोमिन से भी होता है, लेकिन मोमिन से जब कोई होता है तो उसको लगता है जैसे कोई, जैसे मैं कोई पहाड़ के नीचे हूं, इतना बड़ा पहाड़ मेरे ऊपर आ गया। उसके लिए गुनाह पहाड़ की तरह होता है। तो मुनाफिक और मोमिन में फर्क है ना, इनके रवैयों में फर्क है। तो बात सिर्फ समझाने की ये आपको है कि निफाक का खतरा हमेशा रहता है एक मोमिन को। कोई भी अपने आप को इससे अबव ना समझे, मेरे अंदर तो नहीं मुनाफ़कत आ सकती, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। क्योंकि अगर हज़रत उमर को ख़तरा हो सकता है, हज़रत हंजला को ख़तरा हो सकता है, तो हम तो बहुत ज़्यादा ख़तरे में हैं फिर। ये ना हो कि हम खुद को बड़े मोमिन समझते रहें और मुनाफ़कत की बीमारी हमारे ईमान को चाट चुकी हो। अल्लाह ताला इन आयात को भी हमारे लिए सीखने का सबब बनाए और इस बीमारी को हमारे अंदर से निकाल दे। اللهم طهر قلوبنا من النفاق سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك